उस कौन बंदा वहाँ दुकान में सबको बुलाया जय राधा माधव कुंज बिहारी आप भी बैठो जय राधा माधव कुंज बिहारी जन वल्लभ गिरिवर दारे गोपी जन वल्लभ गोपी जन वल्लभ गिरिवर दारे
आश्रम में जाके सबको बुलाओ
यशोदा नंदन व्रज जन रंजन यशोदा नंदन व्रज जन रंजन यशोदा यमुना तीरावनाचारी यमुना तीरा यमुना तेरा वनाचारे राधा माधव कुंज बिहारी राधा माधव कुंज जय राधा माधव Radha Madhav, Jaya Radha Madhav. ओम ज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुर्वैष्णवांश्च श्रीरूपां सागरजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखान्वितां च हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते
तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सबके पास है बुक? किसने किसने लाया है बुक? नहीं खरी प्रो, बुक क्यों नहीं आपके पास? तो वापस लेना चाहिए आपके पास। क्यों भूल गए? क्लास के समय भूल जाते हैं अभी क्यों? तो मेरे पीछे दोहरा ये श्लोक। वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदर उपस्त वेगम एतान वेगान यो विषहे तदीरा सर्वामपि वाम पृथ्वीं सशिष्यात् वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदर उपस्त वेगम एतान वेगान यो विषहे तदीरा सर्वामपि वाम पृथ्वीं सशिष्यात्। शब्दार्थ दोहराइए। वाचः वाणी के वेगम वेग को मनसः मन के क्रोध क्रोध के वेगम वेग को जिह्वा जीभ के वेगम वेग को उदर उपस्थ पेट तथा जनन इंद्रियों के वेगम वेग को एतान इन वेगान वेगों को यह जो विषहेता सहन कर सकता है धीरा धीर गंभीर सर्वाम समस्त अपि निश्चय ही इमाम इस पृथ्वीम संसार सह वह व्यक्ति शिष्यात् शिष्य बन सकता है। अनुवाद श्रील प्रभुपाद द्वारा। वह धीर व्यक्ति जो वाणी के वेग को मन की मांगों को क्रोध की क्रियाओं को तथा जीभ उदर एवं जनन इंद्रियों के वेगों को सहन कर सकता है वह सारे संसार में शिष्य बनाने के लिए योग्य है। तो श्रील प्रभुपाद ये जो रूप गोस्वामी का उपदेशामृत है और रूप गोस्वामी यहाँ अधिकार की चर्चा करते हैं। कौन से अधिकार की चर्चा करते हैं? आप लोग आगे आ सकते हैं, थोड़ा सा आगे आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। तो रूप गोस्वामी छः वेगों का वर्णन करते हैं। छः चीज़ें क्या हैं जो हमें बांध के रखती है? वेग का मतलब है बल या फोर्स। हाँ, जैसे कोई पानी का प्रभाव आ रहा है, प्रवाह आ रहा है बहुत तेज से, तो इतना पावरफुल होता है कि उसको यदि सही दिशा नहीं दोगे तो वो पानी का वेग सारे स्थिति को तहस नहस कर सकता है कि ना। जैसे अभी हमने बीच में सुना कि किस प्रकार से केदार उत्तराखंड में जो पानी का प्रवाह है वेग, हाँ, तो हमारी स्थिति भी वैसी है। ये हमारे बॉडी में ये छः वेग हमेशा निवास कर रहे हैं और इस वेगों की शुरुआत वाचा से होती है, वाणी से। छः वेग कौन कौन से हैं? वाणी का, फिर मन का है, फिर क्रोध का है, जिह्वा का है, पेट का है, उदर उपस्थ का है, हाँ। और ये जो वेग हैं, ये छः वेग इतने बलशाली हैं, एक आसुर के समान है जो हमारे जीवन की दिशा को बदल सकता है। इसलिए रूप गोस्वामी कहते हैं भक्ति शुरू करने से पहले ही हम भक्ति में जो लगा है उसका ये प्रमुख कर्तव्य है कि इन छह प्रकार के जो वेग है उनको कंट्रोल में करना। बल्कि यह कंट्रोल करने का वर्णन नहीं किया है, इसमें क्या कहा गया है, विषहेत धीर, इसको सहन करो। क्योंकि हमें सहन करना ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये वेग आसुर के समान है, इसको यदि हम सहन नहीं करना सीखते, कंट्रोल नहीं करना सीखते, जैसे प्रभुपाद ने कहा कि इस भौतिक जगत का सबसे बड़ा बंधन है मैथुन सुख की आकांक्षा, हर जो उसके लिए बंधा हुआ है। तो प्रभुपाद ने कहा तुमने हजारों जीवन भर कुत्ते बिल्ली के समान अपना जीवन बिता दिया है, तो ये एक जीवन कृष्ण के लिए दे दो, इस एक जीवन में थोड़ा सा सहन करो। किस चीज को सहन करो, ये जो वेग है भौतिक सुख कामना का जो वेग है इसको सहन करो अंत तक, आप देखोगे कृष्ण की कितनी बड़ी कृपा आप पर होगी। हाँ, तो इसलिए ये जो छह प्रकार के वेग है ये आसुर के समान है। इसलिए हम महाप्रसादे प्रार्थना गाते हैं, भक्तिनाथ ठाकुर कहते हैं शरीर अविद्या जाल जड़े इंद्रिय ताहे काल, ये शरीर किस चीज का जाली है, अविद्या का। और इसमें क्या है, इसमें सारे इस शरीर बना किस चीज से है, शरीर सारे इंद्रियों से बना पड़ा है। कितने इंद्रिया है, कितने इंद्रिया है, पांच ज्ञान इंद्रिया, पांच कर्म इंद्रिया, है ना, दस इंद्रियों का ये समुच्चय है। ये दस इंद्रियों को हटा दो तो शरीर का कोई स्थान नहीं बचेगा। तो शरीर क्या है, इंद्रियों का इकट्ठा वंश है, एकत्रित हुई सारी इंद्रिया उसको शरीर कहते हैं। तो भक्तिनाथ ठाकुर कहते हैं ये शरीर अविद्या का जाल है और ये सारी इंद्रिया जड़े इंद्रिय ताहे काल, काल काल का नाम लेते हम डरने लगते हैं। तो ये सारी इंद्रिया काल के समान है, जीवे फैले विषय सागर, और इन इंद्रियों को यदि वश में नहीं करते तो ये हमें क्या करेंगी, फैले फेंक देगी, किसमें, विषय सागर में, जहाँ इंद्रियों के जो विषय हैं उसमें भोग करने के लिए जीव लालायित रहता है और सदैव फिर इस जगत में सड़ता रहता है। तो इसलिए वेग का लक्षण है एक आसक्ति, अरे वेग एक आसुर के समान है, इनको यदि आप सही जगह इसको लगाओगे नहीं सेवा में कृष्ण के, तो ये आपका जीवन उध्वस्त कर देंगे। जैसे एक व्यक्ति था गरीब, उसने क्या किया, साधु के पास गया, उसको लगा कि महाशय मुझे कुछ मंत्र दे दो जिससे मैं बहुत धनवान हो जाऊंगा। तो उसने क्या किया, उसको एक मंत्र दिया और उसको कहा कि एक आसुर जन्म लेगा और वो आपको जो भी कहोगे वो तुरंत आपके लिए काम करेगा, लेकिन यदि उसको काम नहीं होगा तो वो आपको खा डालेगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, मेरे पास बहुत कुछ करने के लिए है। वो गया व्यक्ति, घर आया, उसने मंत्र का उच्चारण किया, तुरंत वो आसुर प्रकट हुआ और उसने कहा महाराज बताइए क्या सेवा है। तो उन्होंने कहा मेरे लिए अभी झोपड़ी में रहता हूँ, बड़ा महल बना दो, फिर कार दे दो, पत्नी दे दो, बच्चे दे दो, कितनी चीज़ें मांग मांग के कितना मांगेगा व्यक्ति, हाँ पूरा जीवन हम उसी में गवा देते हैं। वैसे देखा जाए क्या कितनी चीज़ें हम मांग 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 के थक जाएंगे, ख़त्म हो जाएगा। तो वो सारी चीज़ें मिली और वो आसुर शांत हो गया, काम करके बोला कि अभी मुझे काम दे दो। तो उसने कहा अभी ये सोचने लगा, अरे मेरे पास अभी कुछ है नहीं देने के लिए। और वो साधु ने कहा था इसको काम नहीं दोगे तो ये आपको खा डालेगा। तो ये भागने लगा साधु के पास, साधु को कहा देखो अभी मुझे कुछ बुद्धि काम नहीं कर रहा है, वो आसुर को कुछ देना पड़ेगा काम। तो उन्होंने कहा क्या दिया उसको, एक सीढ़ी दी। उन्होंने कहा उसको बोलो एक सीढ़ी लाओ और जब काम हो तो उसको बुलाओ, काम करवाओ, काम खत्म होने जाने के बाद बोलो सीढ़ी में चढ़ो और उतरो। तो ये गया सीढ़ी मंगवाया और वैसे ही किया। तो ये इंद्रिया भी वैसे ही हैं, इनको हम सही रूप से कृष्ण की सेवा में नहीं लगाएंगे तो इनके अंदर इतना वेग है, पावर है, बल है कि वह हमारा जीवन उध्वस्त कर देती है। और हम देखते हैं शास्त्रों में कितने बड़े बड़े तपस्वी योगी, बड़े बड़े भक्त, जिनका जीवन क्या हो गया, चुटकी बजाने के समान उध्वस्त हो गया, टाइम नहीं लगा, क्यों, क्या नहीं था उनमें, ये जो इंद्रिया है उनका जो वेग है उसको सहन नहीं कर पाए वो। हाँ, तो इनको सहन नहीं करेंगे तो हम क्या करेंगे, अपराध कर बैठेंगे या फिर भौतिक भोग में लगेंगे तो हमारा जीवन उध्वस्त हो जाएगा। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि ये जो वेग हैं इनको हमें सही रूप से नियुक्त करना चाहिए। हाँ, क्योंकि ये वाणी सबसे पहला रूप गोस्वामी वाचा वाणी का बोलते हैं, बोलने का जो ये वेग है, क्योंकि हम हमेशा कुछ ना कुछ बोलना चाहते हैं। तो ये बोलने का काम कौन से क्या चीज़ें करते हैं? एक जीभ और दो ओट, कितनी चीज़ें इसमें? तीन ही हैं। ये हमारा, हम हमेशा बस बोलते रहते हैं, बोलते रहते हैं। इस संसार में आप जाओ जहाँ मर्जी, लोग हमेशा कुछ ना कुछ चिप 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 करते रहते हैं। जैसे सुबह उठो तो जो पंछी हैं वो हमेशा चिप चिप करते रहते हैं। तो मनुष्यों को भी देखा जाए, सुबह से लेकर रात्रि तक केवल कुत्ते के समान भौंकते रहते हैं। हाँ, लेकिन उनको उद्देश्य नहीं है भौंकने का। क्या, जैसे कई कुत्ते होते हैं कुछ भी नहीं लेकिन फिर भी उसका साउंड आते रहते हैं, भौंकते रहेंगे कुछ का बिना काम के। तो हमारी स्थिति भी वही है। यदि हम इस वाणी का उपयोग कृष्ण का गुणगान करने के लिए, हाँ, सही चीज़ के लिए नहीं करेंगे, तो शास्त्र हमारी तुलना, हाँ, चार प्राणियों से करते हैं। सोविड वराह उष्ट खरे संस्तुतः पुरुषा पशु, हाँ, कि वो व्यक्ति जो अपने वाणी का इस्तेमाल भगवान या उनके भक्तों का गुणगान करने के लिए नहीं करता, वो व्यक्ति कौन है? ये चार प्राणियों के समान है। स्वविट वराह, हाँ, जो गांव का सुअर है ना, उसके समान वो कहते हैं शुकदेव गोस्वामी। स्वविट वराह उष्ट्र खरे, उष्ट्र मीन्स ऊंट है, खरे मीन्स क्या है? गधा है। स्वविट वराह उष्ट्र खरे संस्तुतः पुरुषः पशु। तो ऐसे चौथे प्राणी मुझे याद नहीं आ रहे, तो भागवतम के दूसरे स्कंद में ये वर्णन आता है। जातु नाम गदाग्रजः, जो गदा धारण करने वाले कृष्ण हैं उनके बारे में जो सुनते नहीं हैं या उनका वर्णन नहीं करते, हाँ, ऐसे लोग हमेशा भोगते रहते, वाणी का इस्तेमाल करते हैं, वो लोग इन प्राणियों के समान हैं। क्योंकि इन प्राणियों का सदैव गंदी चीज़ें खाने में आसक्ति रहती हैं, गंदगी। जैसे सुअर है, उसको आप रसगुल्ला गुलाब जामुन दोगे तो वो सर में हाथ लगाएगा कि कहाँ ये लेके आया मेरे लिए। वो कहेगा गंदगी हटाओ यहाँ से, मुझे तो मल खाना है। हाँ, तो इस प्रकार से यदि इस वाणी का इस्तेमाल हम भगवान के लिए नहीं करते तो हमारी स्थिति पशु के समान है। इसलिए लोग सुबह से रात तक केवल इसी में जीवन बिता देते हैं। बल्कि कितना बड़ा शक्ति है, इसी के द्वारा आप बंधन में आ सकते हो, इसी के द्वारा आप क्या हो सकते हो? मुक्त हो सकते हो। सुबह उठते ही लोग चिल्लाने लगते घर में, फिर ऑफिस जाते हैं, ट्रेनों में, बसों में, मेट्रो में, हाँ, कहाँ कहाँ केवल बोलते रहते, कुछ भी नहीं तो फालतू बातें करते रहेंगे। उनका कुछ लेना देना नहीं है, पॉलिटिशियन की बातें करेंगे, इधर ये हो गया, उधर एक्सीडेंट हो गया, ये सब चीज़ें क्या करना है बोल बोल के? वाणी का शक्ति का दुरुपयोग क्यों करना है? वाणी का अधिक से अधिक इस्तेमाल भगवान के बारे में होना चाहिए। तो लोग इतना ही नहीं, इतनी बोलने की आदत है, रात को नींद नहीं आती, या नींद आ भी जाए तो कुछ लोग होते हैं सपने में बोलते रहते ना। अब देखो कुछ लोग सोते हैं और बड़बड़ाते रहते हैं, बोलते रहते हैं। तो मतलब ये सब इतना हैवी है, ये वेग कंट्रोल नहीं हो रहा है। हाँ, तो इसलिए, हाँ, शास्त्र कहते हैं, हाँ, कि हमें ये बहुत गंभीर होना चाहिए कि क्या मुझे बोलना है, क्या नहीं बोलना है, क्या उचित है, क्या अनुचित है। कई बार कुछ लोग होते बोलते रहते हैं, लोग कहते तुम्हारा रेडियो बंद करो, अभी बहुत हो गया, कब से चिल्ला रहे हो, कहाँ गंदगी निकल रही है मुँह से। हाँ, तो मुँह से क्या निकलना चाहिए? शुद्ध शब्द निकलने चाहिए। तो हम क्यों बोलना चाहते हैं? दो कारण शास्त्र बताते हैं कि हम इसलिए बोलना चाहते हैं, हाँ, क्योंकि हमें एक प्रकार का विशेष आनंद मिलता है, हाँ, किसी के बारे में बोल के, है कि नहीं? क्या मिलता है? एक विशेष आनंद मिलता है। और दूसरा क्या है कि हम भगवान के साथ ये स्पर्धा रखते हैं और भगवान का जगह हम लेना चाहते हैं। भगवान को त्रिकाल यज्ञ कहा जाता है। भगवान भूत भविष्य वर्तमान आदि को जानते हैं, या भगवान दृष्टा है, वो सारी जगत को देखते हैं। तो भगवान सब चीज़ों के ज्ञाता हैं। तो हम भी बोल बोल के ये दिखाना चाहते हैं कि मैं कोई अज्ञानी व्यक्ति नहीं हूँ, मैं क्या हूँ? बहुत ज्ञानी हूँ, और मैं भी भगवान के समान हूँ और मुझे सब पता है। इसलिए कुछ लोग, आप बातें करोगे दो तीन लोग, तो तीसरा आके वो भी अपनी बात मारेगा, वो दिखाना चाहेगा कि तुम्हें पता नहीं, मुझे भी कुछ पता है। तो शास्त्र कहते हैं इस प्रकार से व्यक्ति अहंकार के कारण ये दिखाना चाहता है, वो भगवान का स्थान लेना चाहता है, हाँ, मूर्ख व्यक्ति। हाँ, तो इसलिए ये बोलने की जो प्रवृत्ति है ये हर एक जीव में है, लेकिन ये सीखना होगा कि इसका इस्तेमाल कैसे करना चाहिए। क्योंकि बाकी युगों में लोग ज़्यादा बोलते नहीं थे, कलयुग में इतना बोलते रहते हैं, सटर फटर कुछ भी आ जाए, मुंह में क्या नहीं लगा हुआ है, हाँ, लगाव नहीं है, जहाँ मर्जी वो बकते रहेंगे, हाँ, देखेंगे नहीं उचित है या अनुचित है। अभी कुत्ता ये नहीं देखेगा कि यह भोंकने के लिए स्थान है या नहीं है, वो जहाँ मर्जी अपना मुंह निकालेगा और चिल्लाने लगेगा, भोंपू होता है ना, भोंपू, जोर जोर से आवाज़ करेगा। तो हमें भी, हाँ, हमारी वाणी का, वाचा का इस्तेमाल उचित रूप से करना चाहिए। हाँ, तो कलयुगा में लोग बहुत बोलते हैं लेकिन वो सारा अनुचित है। इसलिए कलयुगा में लोग अधिक बंधन में आ जाते हैं, कैसे, बोलकर। इसलिए शास्त्र क्या कहते हैं कि कलयुगा में इससे मुक्त होने के लिए भी आपको बोलना ही पड़ेगा। क्या बोलना पड़ेगा? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो बहुत सावधान रहना चाहिए, ये एक बीमारी है। हाँ, जो भगवान के बारे में नहीं बोलते उनके संग में रहते हो तो आपके अंदर भी वो बीमारी आती है और आपकी वाणी से भगवान की कथा निकलना असंभव है, भगवान का नाम निकलना असंभव है। फिर हमारी वाणी भी ये भौतिक चीज़ों का बोलना शुरू करती है और उसकी तुलना फिर पशुओं के साथ की है। तो इसलिए बोलना है तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं मुखे बोलो हरी हरी, मुख से क्या बोलो, हरी हरी बोलो। इसलिए महाप्रभु ने कहा कीर्तन ही सदा हरी, ऐसा इस वाणी को सजा दो कि इस वाणी से केवल कृष्ण के गुणगान के अलावा कुछ ना निकले। हाँ, तो उसके लिए हमें अभ्यास की आवश्यकता है। हर एक व्यक्ति को सीरियसली इस अभ्यास को हम लेंगे तो ये वाणी हमारी अलंकृत हो जाएंगी, विभूषित हो जाएगी, कृष्ण का गुणगान करने में, कृष्ण का नाम कीर्तन आदि करने में। हमें बल्कि ये सोचना चाहिए कि ये वाणी भगवान ने मुझे दी है, इतना अनमोल रत्न मुझे दिया है। कई हजारों लोग हैं जिनके पास ये बोलने की शक्ति नहीं है, मुख है, वो बोल नहीं सकते। तो बल्कि हमें सोचना चाहिए कृष्ण की इतनी बड़ी कृपा है कि इसको मैं इतना विभूषित करूँ कि ये ले लूँ व्रत कि कृष्ण के गुणगान के अलावा कुछ और नहीं बकूंगा। हाँ, बहुत मैंने बक लिया, बहुत मैंने चिल्ला लिया, बहुत मैंने अपना समय, अपना जीवन मैंने बर्बाद कर दिया है, तो मैं केवल कृष्ण के गुणगान के अलावा किसी और चीज़ का वर्णन नहीं करूँगा। तो कोई व्यक्ति यदि अपने वाणी पर कंट्रोल नहीं करता, इस वाचो वेग को सहन नहीं कर पाता, हाँ, तो उसके तीन परिणाम बताए गए हैं कि पहला क्या है कि वो व्यक्ति अपना जीवन बर्बाद करता है या फिर दूसरे का जीवन भी वो क्या करता है, विनाश करता है। ये बहुत पावरफुल चीज़ है। ये वाणी आपको रोड में फेंक सकती है या आपको बड़े आसन में बिठा सकती है, बिठा सकती है कि नहीं, और हजारों लोग आपसे कृष्ण कथा सुन सकते हैं, हाँ, सुन सकते कि नहीं, या तो फिर आप रोड या जेल में कहाँ रह जाओगे। तो डिस्ट्रॉय, आपके जीवन को उद्वस्त कर सकती है, बर्बाद कर सकती है और दूसरों के जीवन को भी बर्बाद कर सकती है। और दूसरा क्या है, ये वाणी सबसे खराब काम कोई कर सकती है वाचो वेगम, तो वो है वैष्णवों की निंदा, भक्तों के प्रति अपराध। वाचो वेगम, ये वाणी का जो पावरफुल वेग है वो है। दूसरा चीज क्या कर सकती है वाणी, भक्तों की निंदा, और ये पूर्ण भक्तिमय जीवन को विनाश कर देती है। भक्तों का जो निंदा है, भक्तों के एक है गुण कीर्तन, है ना, गुण का कीर्तन करना, दूसरा है दोष कीर्तन, दोषों को ढूंढना, रहे इसमें यह है उसमें वो है, और उसकी चर्चा करते रहो चर्चा करते रहो, उससे क्या होगा, वो दोष उस व्यक्ति के अंदर से चले जाते हैं और जिन दोषों का हम आपस में मिलकर बातें करते हैं वो सारे दोष हम में आ जाते हैं। जिस दोषों के बारे में आप सोचते हो, जिस दोषों का आप चर्चा करते हो, वो सारे दोष आपके अंदर आ जाते हैं। इसलिए वाचो वेगम, हमारे भक्तिमय जीवन में हम क्या कर रहे हैं, हाँ, कुल्हाड़ी मार रहे हैं अपने ही पाँव पर, हम खुद ही कुल्हाड़ी मार रहे हैं। और तीसरी चीज़ क्या है कि ये जो वाणी है ये दूसरों को प्रेरित कर सकता है कृष्ण की शरण ग्रहण करने के लिए या किसी का आश्रय ग्रहण करने के लिए। हाँ, तो इसलिए शास्त्र कहते हैं किस वाणी का उपयोग हमें करना चाहिए उचित रूप से। हाँ, जैसे प्रभुपाद कहा करते थे, पहली चीज़ है कि ये वाणी आपका जीवन बर्बाद कर सकती है यदि आप अपने जीप पर, जीप तो अलग है, आगे हम डिस्कस करेंगे जीप के बारे में। हाँ, ये जीप के दो कार्य हैं, एक तो बोलना और दूसरा खाना, तो उसके बारे में हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। लेकिन ये जो वाचा है या वाणी है, ये आपके जीवन को बर्बाद कर सकती हैं जब आप यदि उसको ठीक से वश में नहीं रखते। हाँ, प्रभुपाद इस तात्पर्य में लिखते हैं कि मेंढक सदैव, हाँ, संध्या का समय होता है, बारिश के दिनों में टर 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 करते रहता है। तो ये जैसे हमारे पास मोबाइल है, ये सभी मेंढक के जैसे ही हैं। हम यदि उचित इस्तेमाल नहीं करते हैं तो हम वास्तव में क्या कर रहे हैं, टर टर कर रहे हैं, और किसको बुला रहे हैं, सांप को बुला रहे हैं। कि मतलब, हे माया देवी आओ और मुझे निगल लो, हे सांप आओ और मुझे खा डालो। हाँ, तो इस प्रकार से इस वाणी का इस्तेमाल, इसको विष वेग को हमें कंट्रोल करना चाहिए। एक उदाहरण दिया जाता है कि एक बहुत बड़ा मुर्गा था एक गांव में, हाँ, और बहुत सारे मुर्गियां भी थी और भी मुर्गे थे। तो वो गांव में सारे लोग खेती करने के लिए जाते थे, और हाँ, फिर ये जो मुर्गे हैं वो उनको छोड़ देते थे घर में, गांव में इधर उधर घूमते रहते थे खाने के लिए। तो एक दिन, हाँ, वो गांव के पास ही एक सियार होता था, वो हमेशा सोचता था ये बड़ा मुर्गा है, उसको कैसे खाया जाए, हाँ, अच्छा भोजन हो जाएगा मेरा। तो वो सियार एक दिन आया गांव में, सारे लोग खेती में गए थे। तो जैसे वो गाँव में आया तो उस समय सारे मुर्गे, हाँ, मुर्गियाँ सब ऊपर दीवार पर चढ़ गए। उनको पता लग गया कि अब ये तो हमारा भोजन करने वाला है। तो ये सियार बड़ा चतुर था, बोलने में बड़ा मिठास था, और उसने एक मुर्गे को देखा जो हट्टा कट्टा था, मोटा सा था, और वो बहुत अच्छा, उसका साउंड था, आवाज़ बहुत अच्छी थी, वाणी। तो इस सियार ने कहा उस मुर्गे को देखकर कि देखो मैं कितना दूर से आया हूँ केवल आपकी वाणी को सुनने के लिए, आपकी आवाज़ को सुनने के लिए इतने दूर से आया हूँ। मैं तो आपकी आवाज़ को सुनना चाहता हूँ, और आप सुबह सुबह इतना अच्छा क्या करते हो, देते हो ना, क्या कहते हो, बांग देते हो, इतना आवाज़ सुरीला आवाज़ निकालते हो, तो मुझे वहाँ जंगल तक सुनाई देती है, लेकिन मैं अभी आपके नज़दीक आकर सुनना चाहता हूँ। तो इसने कहा दाल में कुछ काला है शायद। तो फिर वो मुर्गा, हाँ, सोचा देखो ठीक है मैं देता बोलता हूँ। तो उन्होंने कहा देखो आप बहुत दूर हो, मैं इतना दूर से आया हूँ, थोड़ा नज़दीक आना चाहिए ना, आपस में थोड़ा संबंध होना चाहिए, आप नज़दीक रहोगे तो मैं नज़दीक आकर सुनूंगा तो बहुत अच्छा लगेगा। तो ये जो मुर्गा था वो थोड़ा भ्रमित हो गया, हाँ, उसका वाणी, हाँ, उसको लगा कि मेरे जैसा आवाज़ किसी और का नहीं है, मेरी जैसी वाणी किसी और की नहीं है। तो उसने क्या किया, थोड़ा ऊपर दीवार के ऊपर था तो थोड़ा नीचे आ गया। नीचे आकर अभी सियार तो यही ढूंढ रहा था कि ये बच्चा नीचे कैसे आएगा नज़दीक, और जैसे ही इन्होंने कहा कि आप बस बोलो, गाओ जोर से, आपका आवाज़ निकालो, तो अभी नज़दीक था, सियार भी नज़दीक गया, और मुर्गे ने अपना सारा शक्ति, कभी कभी हमें लगता है, हाँ, हम क्या करते हैं, अपना प्रभाव डालने के लिए, हाँ, ये सब करते हैं, तो मुर्गे ने भी पूरा हम अपना शक्ति लगाते हैं, हाँ। तो अपनी आवाज़ से आप कृष्ण को भी आकर्षित कर सकते हो, और किसको आकर्षित कर सकते हो, माया को, या अपने जीवन को बर्बाद कर सकते हो, ख़त्म कर सकते हो। तो ऐसे मुर्गे ने पूरा शक्ति लगाया, और वो इस भावना में था कि देखो, हाँ, मेरी आवाज़ कितनी सुरीली है, मधुर है, मैं कितना अच्छा बोलता हूँ। तो फिर उस मुर्गे ने पूरा शक्ति लगा के अपना मुंह चोंच ऊपर कर ली और जोर से बांग देना शुरू कर दी। जैसे वो किया आग बंद करके, तो सियार ने क्या किया, जाकर उसका कंठ पकड़ लिया, गला दबा लिया, हाँ, और उसी समय उसका जीवन विनाश हो गया। तो इसी प्रकार से हमारी स्थिति है कि इस वाणी के द्वारा आप कृष्ण के प्रिय हो सकते हो, कृष्ण को आकृष्ट कर सकते हो, या अपना जीवन को आप क्या कर सकते हो, विनाश की ओर ले जा सकते हो। इसलिए ये वाणी हमारे पास एक रत्न है, ये रत्न भगवान ने हमें दिया है, और हमें सदैव सोचना चाहिए कि इसका सही इस्तेमाल में कैसे करूं, इसका दुरुपयोग को कैसे मैं अवॉइड करूं, दुरुपयोग को कैसे मैं बंद करूं। तो इसलिए हाँ शास्त्र हाँ इस चीज़ पर जोर देते हैं हाँ कि हमें क्या करना चाहिए, इस वाणी का वाचा का सही हाँ इस्तेमाल करना चाहिए जिसके द्वारा हम कृष्ण के नज़दीक जा सकें। ये नहीं कि मेंढक के बात ही जब भी समय मिले हम टर टर करते रहे, ये भी पता नहीं कि ये बोलना उचित है या नहीं है, आवश्यक है नहीं है, क्योंकि जितना आप बोलोगे भगवान के अलावा उतना आप अपना शक्ति का विनाश करते हो, और जितना आप भगवान के बारे में बोलते हो उतना ही शक्ति आप में क्या होती है, संचारित होने लगती है। इसलिए इंग्लिश में कहा गया है द राइट वर्ड्स कैन ब्रेक ए पर्सन्स हार्ट, इंस्पायर ए नेशन, लिफ्ट ए फ्रेंड स्पिरिट, डिस्ट्रॉय ए चाइल्ड सेल्फ एस्टीम, प्रोपेल मेंस टू द व्हाइट हाउस एंड ब्रिंग ए फ्रेंड स्माइल टू ए टीयर ड्रेंच फेस। तो वो कहते हैं कि जो सही शब्द है ये शब्द किसी के हृदय को तोड़ सकते हैं, या फिर ये शब्द किसी पूरे देश को क्या कर सकते हैं, उत्साहित कर सकते हैं। जैसे वो था हिटलर था जर्मनी का, जिसने ये सारे महायुद्ध घोषित किए थे, या वो कारण था। तो जब वो एक छोटा सा व्यक्ति था हिटलर, लेकिन इतना पावरफुल, पूरे जो देशवासी हैं, कई देश के लोग विशेष रूप से जर्मन के, वो उसके लिए अपना जीवन देने के लिए तैयार हो जाते थे। उसने लोगों को, पूरे देश को इतना इंस्पायर किया बोल बोल के, रोज रेडियो के ऊपर बोलता था, देशवासियों को लेक्चर देता था, पूरे जर्मन के लोग उसके लिए तैयार हो गए थे युद्ध के लिए। और जब युद्ध के लिए जाया करते थे दूसरे देश में, तो जो बड़े बड़े बुलडोजर्स होते ना जाते हैं, हाँ क्या कहते हैं उसको, जो भी बड़े बड़े गाड़ियाँ होती हैं, तो जब ऐसे गड्ढा आता था जिसमें पार नहीं हो सकते थे, तो हजारों लोग उस गड्ढे में गिर जाते थे और उनके ऊपर से गाड़ी जाती थी। मतलब इतना पावर था उसके शब्दानी में हिटलर के, जिसके लिए लोग क्या हो गए थे, अपने शरीर अपने प्राण आदि को नहीं देख रहे थे। हाँ मतलब एक ये जो वाणी है पूरे देश को आप क्या कर सकते हो, प्रभावित कर सकते हो, इंस्पायर कर सकते हो, हाँ प्रेरित कर सकते हो। हाँ और किसी, यहाँ कहते हैं कि कोई दुखी है हाँ जो रो रहा है, उसके चेहरे में आप खुशियाँ ला सकते हो केवल मीठे हाँ शब्द बोलकर। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि ये शब्द, ये वाणी एक बाण की तरह है। हाँ ये बाण जब छूट जाएगा, किसी के हृदय को लगेगा, तो ये क्या करेगा, उसके अंदर जख्म पैदा करेगा, वो हमेशा रहेगी वो जख्म। इसलिए हमें क्या करना होगा, उसका उचित इस्तेमाल करना होगा। जैसे दुर्योधन, हाँ द्रौपदी के शब्दों को कभी भूला नहीं वो, हाँ जब इंद्रप्रस्थ का बड़ा महल बनाया गया, तो वो इतना मय दानों के द्वारा निर्मित वो महल था, जहाँ इतना ऐश्वर्य था, जल के जगह स्थल महसूस होता था और स्थल की जगह जल महसूस होता था। दुर्योधन चला तो उसको लगता था अभी यहाँ पानी आ रहा है, धोती ऊपर करता था तो वो देखता है अरे यहाँ तो फर्श है, और आगे लगता था जब चलता था आगे तो लगता था कि अभी जमीन है, लेकिन वहाँ पानी होता था, उसमें गिर जाता है। तो द्रौपदी ये सब देखकर ऊपर अपने सखियों के संग में हंस रही थी, जब ये देखा कि वो स्थल की जगह पानी, पानी की जगह स्थल जमीन सोचकर वो गिर गया उस जल में, तो द्रौपदी हंसने लगी। अब द्रौपदी ने क्या कहा, ये देखो हाँ ये जो अंधे का पुत्र है ये भी एक अंधा ही है, ये जो शब्द वाणी वो अभी वो नहीं बोलती तो क्या चल नहीं सकता था, लेकिन उसने बिना किसी सोचे बोल दिया, तो ये बाण जब निकल गया और वो किसके हृदय में लगा, दुर्योधन के, और वो लगा इतना बड़ा घाव हो गया कि दुर्योधन ने पूरा विनाश करना शुरू किया। तो ये वाणी बहुत पावरफुल है, इसलिए वर्णन आता है कि बोलने से पहले हम देखें क्या मुझे बोलना चाहिए अभी या नहीं। हाँ इसलिए भगवान ने हमें दो आंखें दी और एक जीभ दी है कि बोलने से पहले सोचो, बोलने से पहले देखो कि ये उचित है या नहीं है, और फिर आप बोलो। तो इसलिए हम ये जो प्रजल्पा है उससे हमें बचना चाहिए, भगवान के अलावा जो बातें हैं। तो ये बोलने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं। हाँ ये वाणी का वेग हमें कंट्रोल नहीं होता, इसलिए हमारे पास कितने सारे विषय हैं जिनको हम अनवांटेड बोलते रहते हैं। हाँ तो इसलिए ये बहुत आवश्यक है। कि हम क्या करें, हमारे मृत्यु को आमंत्रित ना करें। हाँ, शिशुपाल, शिशुपाल ने भी क्या किया था, वाणी का गलत इस्तेमाल के कारण ही तो उसका सर कट गया। नहीं बोलता उस उसमें कौन सी सभा थी, राजसूय यज्ञ, मधुसूदनपुर, कौन सी सभा थी, राजसूय यज्ञ। राजसूय यज्ञ में जब युधिष्ठिर महाराज आदि ने पूछा कि कौन यह है, पूजनीय है, किसकी पूजा करनी चाहिए, तो भीष्म आदि सब ने कहा कि कृष्ण पूजनीय है, उनकी पूजा करनी चाहिए। नकुल, भीम सब राजी हो गए, लेकिन एक ही व्यक्ति ईर्ष्यालु था, उसको खटक रहा था कि अरे कृष्ण की पूजा क्यों हो रही है, इनके अलावा मेरी या किसी और की होनी चाहिए। हाँ, उन्होंने कहा ये तो ग्वाला है, ये कहाँ का क्षत्रिय है, बहुत निंदा की, जितना बोलना था दुर्वचन जितने निकालने थे, गंदी गंदी चीजें सारी निकाले। फिर भगवान ने क्या किया, सहन किया, भगवान भी बोल सकते थे, भगवान ने क्या किया, सहन किया। इसलिए यहाँ सहन करने के लिए कहते हैं। और फिर भगवान ने देखा, बल्कि बाकी भीम आदि सब तलवार और सब निकाल कर गदा लेकर मारने वाले थे, तो भगवान ने देखा कि इसका वाणी का इस्तेमाल सही रूप से नहीं हो रहा है, तो भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र निकाला और जिसके द्वारा क्या किया, शिशुपाल का वध। तो वाणी का सही इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हमारा जीवन हम बर्बाद कर रहे हैं, गलत दिशा में ले जा रहे हैं और दूसरों का जीवन भी बर्बाद करते। पूर्व समय में आप देखो, अब ये जो श्रृंगी ऋषि हैं, उसको जैसे पता चला कि मेरे पिता के ऊपर, शमित मुनि के ऊपर ये परीक्षित ने क्या किया है, मरा हुआ सांप गले में डाला है, तो श्रृंगी ऋषि से रहा नहीं गया, तुरंत वाणी में इतना वेग आ गया, बोलने से रहने गया, उसने वहां जो नदी थी उस नदी का जल लिया और तुरंत वाणी को बोलना शुरू किया, वाणी से श्राप दे दिया। जिस व्यक्ति ने ये कार्य किया है वो व्यक्ति क्या हो जाए, सातवें दिन मृत्यु को प्राप्त हो जाए। तो वाणी का इस्तेमाल आप उचित रूप से नहीं करते हैं तो आप अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हो, या आप दूसरों के जीवन को बर्बाद करने का कारण बन रहे हो। इसलिए हमें सावधान होना चाहिए, दूसरों से भी बातें करते हैं तो सही में भगवान से संबंधित, सेवा से संबंधित बातें हैं तो उतनी करनी चाहिए। अनवांटेड बातें हमें मेंढक की तरह नहीं करनी चाहिए, वो हमारे जीवन में चंचलता ला देती है, आध्यात्मिक शक्ति को खो देती है, फिर हमें भक्ति करने के लिए बहुत कठिन होता है। इसलिए जो बुद्धिमान भक्त है, जो अपना स्वार्थ चाहता है, उसे सोचना चाहिए कि मुझे बातें करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, कितना आवश्यक है, कितना अनावश्यक है, इतना करने से मेरी सेवा चल सकती है, हाँ तो फिर ठीक है। इसलिए हमें सावधान होना चाहिए। हाँ, कि जैसे वो उदाहरण आता है पुराणों में, हाँ, कि एक बार कुछ मेंढक साथ साथ जा रहे थे, एक टहनी के ऊपर जा रहे थे, तो वहाँ एक गड्ढा था, गड्ढा या कुआं था, वो कुछ मेंढक बेचारे नीचे गिर गए और बाकी दो चार मेंढक ऊपर रह गए। तो ये जो ऊपर जो मेंढक थे वो कहने लगे, अच्छा वाह, आप अभी ऊपर आ ही नहीं सकते, मर जाओ नीचे। हाँ, हम कहते नहीं, कई बार ऐसा कहते एक दूसरे को। तो वो मेंढक जो ऊपर थे, उन्होंने कहा आप तो अभी मरने वाले हैं, आपका कोई उपाय नहीं आपके लिए, आप नीचे गिरे हो, मर ही जाओगे, मर जाओ वहाँ। तो अभी जो नीचे मेंढक थे वो बेचारे ऊपर आने के लिए तैयारी कर रहे थे, जंप लगा रहे थे, दो थे। हाँ, तो उन्होंने कहा चलो वो लोग हमें ऊपर, क्योंकि ये लोग ऊपर से बोल रहे थे और इनको लगा वो हमें ऊपर बुला रहे हैं और ये बिल्कुल जंप लगाए जा रहे थे। हाँ, तो एक जो मेंढक था वो बिल्कुल ये इनकी बातें सुन के क्या हो गया, ख़त्म हो गया, वहाँ मर ही गया। दूसरा मेंढक सोचा, अरे ये कितना उत्साह से मुझे बुला रहे हैं, हाँ ऊपर से बुला रहे हैं, बल्कि ऊपर से चिल्ला रहे थे मर जाओ, ऊपर नहीं आ सकते तुम, गिरे हो, ये हो, वो हो। हाँ, तो ये सुन के एक तो मर ही गया, लेकिन दूसरा बिल्कुल उत्साह से एक जंप लगाया तो बाहर आया। उन्होंने कहा अरे तुम कैसे बाहर आ गए, हम तो बोल रहे थे मर जाओ वहाँ, बाहर नहीं आ सकते। उन्होंने कहा मुझे लग रहा था कि आप मुझे जोर से पुकार रहे कि आप बाहर आ जाओ, तो हम, उन्होंने कहा हम तो ये ऐसा नहीं बोल रहे थे, उल्टा बोल रहे थे। उन्होंने कहा मुझे सुनाई नहीं दे रहा था, बहरा था मैं, मेरा मुझे कान से क्या है सुनाई नहीं देता, मैं बहरा हूँ। हाँ, तो इस प्रकार से एक जो मेंढक है इनकी बातों को सुनकर, इनकी वाणी को सुनकर तो मर गया। तो मतलब वाणी के द्वारा हम किसी को प्रेरणा दे सकते, उसको वापस नया जीवन प्रदान कर सकते हैं, या किसी के जीवन को क्या कर सकते हैं, हम अपने वाणी के द्वारा ख़त्म कर सकते। इसलिए बोलने से पहले, क्योंकि हम किसी से बोलते हैं तो वास्तव में हमें सोचना चाहिए कि मेरी वाणी के द्वारा इसके जीवन में मैं जहर तो नहीं डाल रहा हूँ, जैसे मंथरा ने जहर डाला किसके जीवन में, कई कई के, इतना अच्छा भक्ति हो रहा था, कई कई इतनी अच्छी राम की सेवा कर रहे थे, लेकिन उस राम के विरोध में ही किसको, किसने उनको फुसलाया, मंत्रा ने। तो मतलब हमारी वाणी अमृत के समान भी हो सकती है और जहरीली हो सकती है, दूसरे के जीवन में हम जहर डाल सकते हैं। हाँ, तो इसलिए बहुत सावधान और गंभीर होना चाहिए कि इस वाणी का इस्तेमाल हम उचित रूप से करें, अन्यथा हमारा जीवन जो है हम बर्बाद कर सकते हैं। और भक्त का जीवन वाणी का बहुत कार्य है। इस वाणी से हमें कृष्ण नाम आदि का उच्चारण करना है, वाणी से कृष्ण कथा करना है, कृष्ण कीर्तन आदि करना है, तो उसका अधिक से अधिक हमें इस्तेमाल करना चाहिए। हाँ, तो वाचो वेगम का पहला रिजल्ट क्या है, पहला जो मैंने अभी डिस्कस किया क्या है, वाणी का वेग यदि हम कंट्रोल नहीं करते तो क्या होगा, वाणी के वेग को हम कंट्रोल नहीं कर पाते तो क्या होगा, पहली चीज़ क्या होगी, हमारा जीवन हम बर्बाद कर सकते हैं और दूसरे का जीवन भी हम बर्बाद कर सकते हैं। हाँ, तो ये वाचो वेगम से हमें सीखना चाहिए। फिर मैं आगे डिस्कस करूँगा और जो दो चीज़ें हैं, दो चीज़ें क्या थी और वाचो वेग के दुष्परिणाम क्या है, दो चीज़ें और हाँ, वाणी का सबसे गंदी चीज़ भक्तों की निंदा करना, और तीसरा क्या है, तीसरा क्या है, हाँ तीसरा क्या है, जीवन प्रभु, तीसरी चीज़ क्या है, ये शवानी किसी को प्रेरित उत्साहित कर सकती है या फिर अनुत्साहित कर सकती है। इस वाणी के द्वारा कोई व्यक्ति, किसी को आप प्रेरित कर सकते हो, वो कृष्ण की शरण ले सकता है या कृष्ण की शरण से बाहर जा सकता है ना। तो इसलिए ये दो चीज़ें और भी विस्तार से हम चर्चा करेंगे। तो आपसे यही निवेदन है कि आप आइए ऑन टाइम और अपना पुस्तक लेके आइए और पुस्तक पढ़िए, हाँ रोज़ उपदेशामृत को पी लीजिए, कंठस्थ कीजिए। हाँ, कितने लोगों ने पढ़ा था पिछले हफ्ते उपदेशामृत, एक बस, बाकी लोग क्या कर रहे थे, सो रहे थे। आपने पढ़ा, श्लोक याद होगा ना सबको, बोलिए सब जिनको याद है वो बताइए जोर से।
वाचो वेगं मनसा कृतं वेगं वेगं अदरपोस्तं वेगं अतान वेगं अतान वेगं जो विषय देधिरा पोसे वेगं
पढ़ के हाँ
अतान वेगं जो विषय देधिरा पोसे वेगं से
आप बोलो।
वाचो वेगं मनसा कृतं वेगं
क्या हो रहा है, सर्वामतिमाम प्रभु बोलिए, खाली समय में पढ़ो जोर जोर से, श्लोक याद करने का क्या है, जोर जोर से उच्चारण करना शुरू, ठीक से बैठो ना, हाँ बोलो, क्यों नहीं याद किया, हाँ क्यों, याद करो श्लोक को प्लीज़, टाइम सबके पास है, हम उसका इस्तेमाल उचित रूप से नहीं कर रहे हैं। जीवन प्रभु क्यों नहीं याद किया, आप तो राजा हो यहाँ, याद करो प्लीज, हाँ थर्सडे याद करो, आप क्यों याद क्यों नहीं होगा, आप चिल्लाते रहोगे श्लोक को रोज रोज सुबह उठते ही गाना शुरू करो। जैसे मैं दिल्ली में उस श्लोक का क्लास लेता था परिक्रमा मार्ग में, 5 मिनट में एक श्लोक सारे भक्तों को याद हो जाता था। नायक हरिप्रभु भी थे उसमें, पावरफुल था। आज भी भक्त याद करते हैं कि बस आपकी याद आती है श्लोक का क्लास है, तब जो याद हुए हैं उसके बाद याद ही नहीं कोई कर रहा है श्लोक का। तो ये पावरफुल है, सुबह रोज 5 मिनट भी आप इसको उच्चारण करोगे जोर जोर से, वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम विभाग, और एक बार एक ही लाइन को 2 बार बोलना है, वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम, वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम, जिवा वेगम उदर उपस्थ वेगम, जिवा वेगम उदर उपस्थ वेगम। ये वैदिक स्टाइल है श्लोक याद करने का। गुरुकुल आप मायापुर जाओगे, गुरुकुलीज बच्चों को भी इसी प्रकार से सिखाते हैं, तो रोज याद होगा और वाणी शुद्ध होगी। श्लोकों को याद करने से क्या होगा, वाणी शुद्ध होती है, बहुत शुद्ध होती है। इसलिए आप ये करो, सब याद कर सकते हैं, गीता के भी रोज आप दोहराओगे तो आपको याद हो जाएगा। जैसे ब्रह्म संहिता है उसको रोज आप दोहराओ, आप देखोगे 15 दिन में आपको कई श्लोक पहचाने हुए आ जाएंगे और 1 महीने में कुछ श्लोक अपने आप याद हो जाएंगे। ये रोज दोहराने का ये लाभ है। रोज आप चाहे याद नहीं करो लेकिन रोज उसको दोहराओगे तो आपको याद हो जाएगा अपने आप ही। हाँ, तो ये पावरफुल चीज़ है। तो आप लोग हाँ पढ़ो ग्रंथों को, टाइम दो, दोपहर के समय में पेड़ के नीचे बुक ले लो और पढ़ो जोर जोर से, आधा घंटा 1 घंटा गीता भवन में आके। रूम में तो आपस में बातें करते रहेंगे तो फिर पढ़ाई नहीं होगा। हाँ, हम सब स्वतंत्र हैं, अलग से निकलो अपना पढ़ाई करो। तो आप लोग अगले बार पढ़ के आओ ये श्लोक का, ठीक है। हरे कृष्णा। श्री उपदेशामृत के, श्री रूप गोस्वामी के।